अगले दिन निक सुबह जल्दी उठकर इंस्टीट्यूट के लिए निकल गया। वो आज भी परेशान था और कल रात वाली बात के बारे में सोच रहा था। आने से पहले उसने प्रियल की उस तस्वीर को भी देखा जो उसने मोड़ कर रख दी थी। निक इंस्टीट्यूट के मेन गेट के पास पहुंचा तो वो जैन से टकरा गया। जैन उसका भाई था जिसे उसने अडॉप्ट किया था। निक का ध्यान रात वाली बातों पर था, इसलिए उसने जैन की तरफ ध्यान नहीं दिया और उससे टकरा गया। जैन ने उसी वक्त निक को संभालते हुए पूछा, आर यू ऑल राइट सर, ध्यान कहाँ है आपका? जैन जानता था निक के ही रूल्स बहुत मायने रखते थे, इसलिए उसने उसे सर कहा। निक ने खुद को संभाला और अपनी जैकेट संभालते हुए जैन से कहा, इतना फॉर्मल होने की कोई ज़रूरत नहीं है जैन, यहाँ कोई क्लास नहीं लग रही जो तुम मुझे सर बुला रहा है। सॉरी भाई, जैन हल्के अंदाज में बोला, इंस्टीट्यूट में सबको पता है कि हम दोनों भाई हैं और आपने भी मुझे घर से लाकर यहाँ शिफ्ट कर दिया है। घर पर रहकर फोकस नहीं किया जा सकता जैन, और मत भूलो तुम्हारे लिए मैं भी इंस्टीट्यूट में सेटल हुआ हूँ, वरना मैं फील्ड पर रहकर आसानी से दूसरे काम कर सकता था। ठीक है भाई, जैन मुस्कुराया और कहा, मैंने बस नॉर्मली अपनी बात कही थी। इसके बाद वो बोला, वैसे भाई आपका ध्यान कहाँ था जो आप मुझसे टकरा गए? ये पहली बार हुआ है, आप एक एजेंट हो तो हमेशा चौकन्ने रहते हो, मगर आज कैसे? निक खामोश सा हो गया। उसने चेहरे पर उदासी लाते हुए कहा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही कुछ पुरानी बात याद आ रही थी, वो यादें जिन्हें मैं काफ़ी समय से भुला चुका हूँ। मैं समझ गया भाई, मगर जो हो गया उसे याद करने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने पहले भी कहा था और अब भी कह रहा हूँ, आपको नई शुरुआत करनी चाहिए, आपको एक नए रिश्ते के बारे में सोचना चाहिए। जैन, निक ने अपने चेहरे पर हल्का गुस्सा दिखाया, तुम मेरे छोटे भाई हो, मैं नहीं, तो मुझे क्या करना है क्या नहीं मुझे मत बताओ, जाओ अपनी क्लास में जाओ और क्लास लगाओ, निक ऑर्डर वाले अंदाज में बोला और फिर वहां से निकल गया। वहीं जैन उसे जाता हुआ देखता रहा और जब वो उसकी आंखों से ओझल हो गया तब बोला, भाई फिर से पहले जैसे हो रहे हैं, ऐसा रिएक्ट उन्होंने तब किया था जब एली इस दुनिया से, गॉड सब सही रखना। जैन खुद से बात कर रहा था तभी आलिया वहां आई। आलिया ने जैन को खुद से बात करते हुए देखा तो हंसने लगी। जैन ने उसे हंसते हुए देखा तो उसके पास गया और कहा, क्या मैं क्या तुम्हें पागल नजर आ रहा हूँ जो तुम मुझ पर हंस रही हो? आलिया हंसते हुए ही बोली, अब कोई अकेले खड़े होकर खुद से बात करेगा तो लोग उसे पागल ही समझेंगे ना। अकेले बात करने के और भी कई सारे कारण होते हैं, हमेशा पागल लोग ही अकेले बात नहीं करते। इसके बाद उसने आलिया के चेहरे को देखा और कुछ याद करते हुए बोला, तुम फर्स्ट ईयर से हो ना, मैंने देखा है तुम्हें शायद। आलिया ने अपने चेहरे का अंदाज बदला और कुल मिलाकर मज़ेदार होती हुई बोली, अच्छा तो आपने मुझे पहले भी देखा है, वाह मुझे नहीं पता था मैं इतनी खूबसूरत हूँ जो लड़के मुझे ऐसे देखेंगे, ये कुछ ज्यादा ही नहीं हो गया? जैन उसे तिरछी नजरों से देखने लगा। मैं मजाक कर रही थी, आलिया ने हंसकर कहा, मुझे नहीं पता था आप मुझे जानते हैं, कैप्टन निक के काफी खास लगते हो आप। हाँ वो मेरा बड़ा भाई है। ओह ग्रेट, मुझे इसके बारे में नहीं पता था। इसके बारे में ज्यादातर लोगों को नहीं पता, हमने ये बात काफी कम लोगों को बताई है, तब तो आपसे मिलकर खुशी हुई। आलिया ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसे जैन से मिलाया। कौन से ईयर में हो आप वैसे? सेकंड। वाह सच में आपके पास फर्स्ट ईयर के नोट्स पड़े हैं ना? मुझे एडवांस में पढ़ने की आदत है मगर मटेरियल नहीं मिल रहा है। हाँ पढ़े हैं। जैन को समझ नहीं आ रहा था वो क्या बोले, आलिया काफी ज्यादा फ्रेंडली रिएक्ट कर रही थी। देन क्या मुझे आपके नोट्स मिल सकते हैं? आलिया ने पूछा। जैन को थोड़ा अजीब लगा मगर उसने नोट्स का जिक्र कर दिया था तो वो इसके लिए मना भी नहीं कर सकता था। उसने कहा, ठीक है ले लेना, मुझे अपनी मेल आईडी दे दो, मैं सब आपको मेल कर दूंगा। आलिया ने अपनी मेल आईडी जैन को दे दी, जिसके बाद आलिया वहां से अपनी क्लास के लिए निकल गई, जबकि जैन पीछे से उसे जाते हुए देखता रहा। वो उसे कुछ सही सी नहीं लगी। जिनी क्लास में स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दे रही थी, कल वाली बात की वजह से वो गुस्से में थी। निक ने उसे गुस्से में बात की थी जबकि उसने भी अपने अलग ही तेवर उसे दिखा दिए थे। ना तो उसे निक की कही गई बात पसंद आ रही थी, ना ही उसे अपनी कही गई बात सही लग रही थी। प्रियल भी ट्रेनिंग में थी मगर चोट की वजह से वो ट्रेनिंग नहीं कर रही थी, वो दूर से ही सबको देख रही थी। सबको दूर से देखने के साथ साथ वो इस बात के बारे में सोच रही थी कि निक ने उसे देखकर अलग से रिएक्ट क्यों किया। तभी रॉन की बाइक क्लास के बाहर आकर रुकी और वो उतरकर अंदर आया। जिनी ने उसे देखा तो वो स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग करने का कहकर उसकी तरफ चली गई। वहां जाते ही उसने रॉन से पूछा, तुम यहाँ क्यों आए हो? कमाल है, मैं नहीं आ सकता क्या? यहाँ मेरी बंदी काम करती है, I mean, वो इस पूरे क्लास की हेड है तो मैं यहाँ क्यों ना आऊँ? निक को पता चला तो वो तुम्हारी बड़ी बात बना देगा, ये भी हमारे रूल में नहीं आता। उसका बिहेवियर आजकल अजीब सा हो रखा है तो उससे कुछ भी एक्सेप्ट किया जा सकता है। वो आजकल थोड़ा परेशान रहने लगा है। दोनों क्लास के बाहर आकर नॉर्मल वॉक करते हुए बात करने लगे। उसका वैसा ही बिहेवियर देखने को मिल रहा है जैसा हम 7 साल पहले एली की मौत के बाद देखने को मिला था। वो रूढ़ हो गया था, खुद में रहने लगा था, हर किसी से गुस्से में बात करता था। पहले ये कम होता था, मगर कल से और भी ज्यादा होने लगा है। शायद मैं जानती हूँ ये सब क्यों हो रहा है। कहीं ना कहीं इसकी वजह मैं ही हूँ। मैंने आखिर इसके बारे में क्यों नहीं सोचा? अब तुम उसके बदलते बिहेवियर में कहाँ बीच में आ गई? रॉन उसकी तरफ देखने लगा। आ, जिनी खुद में ही सोचने लगी। खुद में सोचते हुए उसने कहा, दरअसल मुझे तुम्हें ये बात बहुत पहले बता देनी चाहिए थी। क्लास में वो लड़की जो मेरे साथ रह रही है, प्रियल, उसे देखकर कभी कभी आली की याद आती है, और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है निक को भी उसकी याद आई होगी, इसी वजह से वो ऐसा हो गया है। क्या कह रही हो तुम? और ये बात तुम मुझे अब बता रही हो? प्रियल को तो मैंने भी देखा था, मगर मुझे ऐसा फील नहीं आया। तुमने उसे ज्यादा क्लोज से नहीं देखा, दूर से फीलिंग नहीं आती, लेकिन क्लोज हो तो प्रॉपर वही वाली फीलिंग आती है। अगर ऐसा है तो मेरा यकीन मानो, उसे निक से दूर ही रखो, वरना तुम उसे निक के करीब लाकर उसे आग के हवाले करने वाला ही काम कर रही हो। ऐसी आग के हवाले जो दूसरों को नहीं, बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ खुद को जलाने का काम कर रही है। जिनी ने ये सुना तो वो पूरी तरह से खामोश हो गई। खामोश होने के बाद उसने कहा, शायद मुझे भी अब यही लग रहा है। निक अपने ऑफिस में था, जहाँ उसने अप्रियल की तस्वीर अपने डेस्कटॉप पर सामने ही निकाल रखी थी। वो उसे नजरअंदाज करने की कोशिश कर रहा था, मगर चाहे हुए भी उसे नजरअंदाज नहीं कर पा रहा था। तभी उसके फोन की कॉल की घंटी बजी। उसने फोन उठाया तो पता चला ये अथॉरिटीज की ओर से आया कॉल था। इसमें सामने से कहा गया, ये इमरजेंसी कंडीशन के लिए किया गया कॉल है। एक पब्लिक बस में बम मिला है। लोकेशन NA इंस्टीट्यूट से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर है। बम स्क्वाड भेज दिया गया है। ऑर्डर है इंस्टीट्यूट से एक टीम भेजी जाए और पब्लिक सेफ्टी के लिए पब्लिक को बस से दूर रखा जाए। निक ने फोन काट दिया और तुरंत टेबल के पास मौजूद रेड बटन को दबा दिया। ये इमरजेंसी बटन था जिसके बाद सारे एजेंट जाने के लिए तैयार हो जाते थे।
जल्द ही निक एम्मा के साथ अपनी गाड़ी की ओर जा रहा था। वो अपने ब्लैक आउटफिट में था। उसके पीछे एक दर्जन और एजेंट थे। निक ने एम्मा से पूछा, रॉन कहाँ है? एम्मा जानती थी वो जिनी से मिलने गया है, लेकिन ये बात बताना उसके लिए खतरनाक हो सकती थी, इसलिए उसने बताया, वो आज अपने किसी फ्रेंड से मिलने गया है। मैंने उसे इन्फॉर्मेशन दे दी है, तो जल्द ही लोकेशन पर आ जाएगा। ग्रेट, तुम लोगों को जो सैलरी मिल रही है, तुम लोग उसका अच्छा खासा फायदा उठा रहे हो, निक ने कहा और गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर उसमें बैठ गया। अच्छा हुआ फ्रेंड का नाम नहीं बताया, वरना ये मिलने वाली सैलरी आज से बंद हो जाती, एम्मा खुद से बोली और दूसरी तरफ जाकर गाड़ी में बैठ गई। जल्द ही सब लोकेशन पर थे और वहां लोगों की भीड़ को बस से दूर रख रहे थे। निक बस से दूर खड़ा था और अपनी टीम को काम करते हुए देख रहा था। उसके दोनों हाथ अपनी कमर पर थे, जबकि आंखों पर चश्मा लगा हुआ था। तभी उसने देखा बस के अंदर किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही है। ये देखते ही उसने पहले अपने आसपास देखा और फिर बस की ओर जाने लगा। एम्मा ने उसकी तरफ ध्यान दिया तो उसे रोकते हुए बोली, निक, यू कैन डू दिस, बस में बम है। हाँ, मगर वहाँ कोई बच्चा भी है, अगर हमने उसकी हेल्प नहीं की तो कुछ भी हो सकता है। बम स्क्वाड को आने दो, वेट करना तो और भी खतरनाक हो सकता है, निक ने कहा और फौरन बस के पास पहुंचकर उसके अंदर चला गया। वो उसके अंदर पहुंचा तो उसने देखा आखिरी सीट पर नीचे एक औरत बच्चे के साथ डरी हुई पोजीशन में थी। निक उनके पास गया और दोनों से बोला, चलो बाहर चलो, यहाँ खतरा है। नो, आई कांट डू दिस, देयर इज अ बम, वो डरी हुई औरत बोली। निक ने बच्चे को पकड़ा और जबरदस्ती उस औरत को खड़ा कर सामने की ओर कर दिया। इसके बाद उसने सख्त आवाज में कहा, जल्दी आगे चलो, तुम तो जाओगी, तुम्हारी वजह से इस बच्चे को और नुकसान पहुंचेगा। औरत थोड़ा आगे गई तो उसने बच्चे को भी उसे पकड़ा दिया। औरत बच्चे के साथ नीचे उतरी और फिर सामने की तरफ दौड़ पड़ी। उसे बाहर भेजने के बाद निक बस में और सीटों को भी देखने लगा, इस चक्कर में कि कहीं यहाँ भी कोई न छुपा हो। सभी सीटों को देखने के बाद वो बाहर उतरने के लिए निकला तो उसे फिर से प्रियल याद आ गई। वो दृश्य उसे याद आ गए जिसमें वो प्रियल की ओर मुड़ा था और वो उसके ठीक सामने अपने बाल संभाल रही थी। वो बस से उतरा और सामने की ओर चलने लगा, मगर याद आ रहे दृश्यों की वजह से जो भी हो रहा था वो धीमी गति से होता हुआ प्रतीत हो रहा था। तभी निक को प्रियल के बाद एली के दृश्य याद आए, जहां उसकी सांस उखड़ रही थी। तभी उसे याद आने वाले दृश्यों में मशीन बंद हो गई, जबकि बाहर के दृश्यों में बस में बम धमाका हुआ और निक उछलता हुआ सामने गाड़ी से टकरा गया। याद आने वाले दृश्यों में मशीन के बंद होने के बाद टुंग की आवाज़ गूंजी और हकीकत में बम धमाके के बाद कान में गूंजने वाली आवाज़ गूंजने लगी। दोनों आपस में मिली और इसी के साथ निक की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। प्रियल दोपहर के टाइम होने वाली ट्रेनिंग को देख रही थी। तभी उसके दिल की धड़कन हल्की सी बढ़ी और उसे ऐसा लगा जैसे कुछ गलत हुआ है। उसके दिल की धड़कन पहली बार अजीब तरीके से धड़की थी, मगर तब उनमें कभी कुछ गलत होने का एहसास नहीं था, जबकि आज ऐसा था।